नमस्कार मित्रों, ओशो के ध्यान जगत में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम ओशो से जानेंगे कि ध्यान के मार्ग में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो हमें कुछ क्षण भी विश्राम में नहीं बैठने देती।
ओशो कहते हैं, ध्यान के मार्ग पर केवल दो कठिनाइयां हैं, एक है अहंकार और एक तुम्हारा लगातार बड़बड़ाने वाला वाचाल मन। इस एपिसोड में हम अहंकार पर चर्चा करेंगे।
हर तरह से अहंकार सबसे बड़ा रोग है। यदि अहंकार बड़ा हो तो तुम्हें बाधा देता है, और अहंकार बहुत छोटा हो तो एक घाव बन जाता है, फिर वह भी बाधा देता है। दोनों ही बातों में अहंकार एक समस्या है। अहंकार कैसे जन्मता है? मेरा, मुझ, तू और फिर मैं की यात्रा।
ओशो कहते हैं, पहले मुझ, फिर तू और तब फिर एक प्रतिबिंब की भांति मैं उठता है। मैं मालकियत का सबसे सूक्ष्मतम और सुगठित रूप है। एक बार तुमने मैं कह दिया तो समझो पाप कर दिया।
माँ के गर्भ में हम गहन आनंद में होते हैं, क्योंकि माँ के साथ इतना एक रूप रहते हैं कि अलग का बोध नहीं होता।
ओशो ने कहा, माँ के गर्भ में हर बच्चा बिल्कुल आनंदित होता है। निश्चित ही वह उससे बेखबर होता है, उसका उसे कोई बोध नहीं होता। वह अपने आनंद के साथ इतना एक रूप होता है कि पीछे जानने वाला कोई नहीं बच रहता। आनंद उसका स्वभाव होता है और ज्ञाता व ज्ञेय के बीच कोई भेद नहीं होता। तो निश्चित ही बच्चे को बोध नहीं होता कि वह आनंदित है। तुम्हें बोध तभी होता है जब तुम कुछ खो देते हो। यह ऐसा ही है, बिना कुछ खोए उसे जानना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तुमने उसे खोया ही नहीं तो तुम उसके साथ पूरी तरह एक रूप हो, कोई भेद ही नहीं है। दृष्टा और दृश्य एक हैं, ज्ञाता और ज्ञेय एक हैं। हर बच्चा गहन आनंदपूर्ण दशा में होता है। मनोवैज्ञानिक भी इससे सहमत होते हैं। वे कहते हैं कि धर्म की पूरी खोज माँ के गर्भ को फिर से खोज लेने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वे इसे धर्म की आलोचना की तरह उपयोग करते हैं, लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल भी आलोचना नहीं है। यह तो सीधा साधा सत्य है। हाँ, धर्म की खोज फिर से गर्भ की खोज है। धर्म की खोज फिर से इस पूरे अस्तित्व को ही एक गर्भ बना लेने की खोज है।
पैदा होते ही, माँ से अलग होते ही हम जानने की कोशिश करने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि माँ से अलग होते ही हमें अपनी सीमाओं का बोध होने लगता है। हमारा शरीर, हमारी जरूरतें, हमारी भाव दशाएं, हमारा एक रूपता से अलगाव हो जाता है, एग्जिस्टेंस से अलग हो जाते हैं, माँ से गठबंधन टूट जाता है।
ओशो कहते हैं, बच्चा पैदा होता है और अचानक वह केंद्र से परे फेंक दिया जाता है। अचानक वह धरती से, माँ से उखड़ जाता है। उसके सहारे खो जाते हैं और उसे पता नहीं होता कि वह कौन है। जब वह माँ के साथ था तो जानने की कोई जरूरत भी नहीं थी वह सब कुछ था और जानने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई भेद नहीं था, कोई तू नहीं था, इसलिए किसी मैं का कोई प्रश्न नहीं था। सत्य अविभाजित था, अद्वैत था, शुद्ध अद्वैत था। लेकिन एक बार बच्चा पैदा हो जाए और उसकी नाभि के तंतु काट दिए जाएं और वह अपने आप से श्वास लेने लगे, तो अचानक उसके पूरे प्राण यह जानने की अभीप्सा बन जाते हैं कि वह कौन है। यह स्वाभाविक है। अब उसे अपनी सीमाओं का बोध होने लगता है, अपने शरीर का, अपनी जरूरतों का। कभी वह सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी वह तृप्त होता है, कभी अतृप्त होता है, कभी उसे भूख लगती है, वह रो रहा होता है और माँ का कोई पता नहीं होता, कभी वह माँ के स्तनों से लगा होता है और फिर से माँ के साथ एक रूपता का आनंद लेता है। लेकिन अब कई भाव और कई दशाएं हैं और धीरे धीरे वह अलगाव अनुभव करने लगेगा। एक अलगाव हो गया, गठबंधन टूट गया, माँ के साथ उसका पूरी तरह गठबंधन था। अब वह हमेशा अलग रहेगा और उसे खोजना होगा कि वह कौन है। जीवन भर व्यक्ति यही खोजने का प्रयास करता रहता है कि वह कौन है। यह सबसे बुनियादी प्रश्न है।
कहे हम आवारा हैं, नानी कहे मैं जरा हूँ, भाई कहे मैं जरा हूँ, बाबा कहे मैं दुलारा हूँ, लेकिन सब कहे हम आवारा हैं। मैं हूँ कौन, तू है कौन, ये है कौन, वो है कौन। मैं हूँ कौन, तू है कौन, ये है कौन, वो है कौन।
दूसरा प्रश्न, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझसे पूछते हो? भले आदमी, तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो, और दूसरे से पूछ के जो उत्तर मिलेगा क्या किसी काम आएगा, उधार होगा। मैं तुम्हें कोई भी उत्तर दे दूं, तुम्हारा उत्तर न बन सकेगा, तुम्हें अपना उत्तर खोजना होगा। प्रश्न तुम्हारा, उत्तर भी तुम्हारा ही प्रश्न को हल करेगा। मैं तो तुमसे कह दूं तत्वमसी श्वेत केतु, कि श्वेत केतु तुम तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, इससे क्या होगा। मैं तो तुमसे कह दूं तुम आत्मा हो, शाश्वत अमृत स्वरूप, इससे क्या होगा। ऐसे उत्तर तो तुमने सुने बहुत, ऐसे उत्तर तो तुम्हें भी कंठस्थ, ऐसे उत्तर तो तुम भी दूसरों को दे देते हो। तुम्हारा बेटा भी तुमसे पूछेगा तो तुम उसको भी समझा देते हो कि तू आत्मा है, साक्षी स्वरूप है, सच्चिदानंद है। दूसरों के उत्तर काम नहीं आते, कम से कम इस संबंध में कि मैं कौन हूं। तुम्हें अपने मैं की ही सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी। ये मैं का गहरा कुआ है, इस कुएं में तुम उतरोगे तो ही जल स्रोत तक पहुंचोगे, और ये गहरा कुआ है, और यहां तुम्हें अकेला ही जाना होगा। यहां कोई दूसरा तुम्हारे साथ भी नहीं जा सकता, तुम्हारे भीतर कौन जा सकता है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं जा सकता। ये यात्रा अकेले की है, ये अकेले की उड़ान अकेले की तरफ। इसलिए सारे धर्म कहते हैं एकांत का रस लो, क्योंकि जब तक एकांत का रस न लिया तब तक अपने में उतरोगे कैसे, क्योंकि वहां तो अकेले जाना होगा। इसलिए सारे धर्म कहते हैं ध्यान का दिया जलाओ, क्योंकि ध्यान का दिया ही साथ जा सकता है, और कुछ साथ ना जाएगा, ना धन जाएगा, ना पद, ना प्रतिष्ठा। ध्यान का दिया और तुम, तो फिर तुम उतर सकते हो तुम्हारे गहरे से गहरे कुएं में। निश्चित ये गहरा कुआ है, तुम्हारी गहराई अनंत है, तुम्हारी उतनी ही गहराई है जितनी परमात्मा की, इसलिए कम तो कैसे होगी, छोटी तो कैसे होगी। ऊपर से झांकोगे तो नीचे का जल तुम्हें दिखाई भी ना पड़ेगा, गहराई बहुत बड़ी है। यात्रा लंबी है, स्वयं की यात्रा सबसे लंबी यात्रा है। ये बात बड़ी विरोधाभासी लगती, क्योंकि हम तो सोचते हैं स्वयं यानी ये रहा, आंख बंद की कि पहुंच गए। काश इतना आसान होता। आंख बंद करने से जरूर आदमी पहुंचता है, लेकिन आंख बंद करने से आंख बंद कहां होती। आंख तो बंद हो जाती, सपने तो बाहर के ही चलते रहते, व्यवसाय बाहर का ही चलता रहता। आंख बंद हो जाती चित्र तो पराए ही उठते रहते, मित्र परिजन सगे संबंधी। आंख तो बंद हो जाती अकेले तुम कहां होते हो। अकेले तुम हो जाओ तो खुले आंख भी भीतर जा सकते हो। ये भीड़ हटानी पड़े। तुम्हारे सारे शास्त्र, तुम्हारे सारे सिद्धांत सब हटा के रख देना पड़े, क्योंकि इस बोझ को लेकर तुम भीतर ना जा सकोगे। ये बोझ तो कठिन हो जाएगा। ये यात्रा तो बड़ी निर्भार ही हो सकती, और ध्यान रखना कोई साथ जाने को नहीं, न कोई उत्तर। अक्सर तो उत्तर बाधा है, क्योंकि तुमने उधार उत्तर मान लिए, इसलिए तुम भीतर जाते नहीं, खोजते नहीं। तुमने मान ही लिया कि भीतर आत्मा है तो तुम जाओगे क्यों। ये उधार उत्तर, ये विश्वास तुम्हारे जीवन को अनुभव नहीं बनने देते। तो मैं तुमसे पहली बात तो ये कहूंगा, तुम पूछते हो मैं कौन हूं, हो तो तुम जरूर, नहीं तो पूछते कैसे। कुछ तो हो जरूर, और कुछ जो भी हो, आबासा कुछ भी उसका नाम हो, चैतन्य भी जरूर हो, अन्यथा प्रश्न कैसे उठता, क्योंकि पत्थर नहीं पूछते। चैतन्य हो, तुम्हारे प्रश्न से ये नतीजे निकाल रहा हूं, तुम्हें उत्तर नहीं दे रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे प्रश्न को साफ कर रहा हूं, तुम्हारे प्रश्न का विश्लेषण कर रहा हूं। क्योंकि अगर प्रश्न का ठीक ठीक निदान हो जाए तो उपचार बहुत कठिन नहीं। निदान बड़ी बात है। निदान ठीक हो जाए बीमारी का तो औषधि खोज लेनी बहुत मुश्किल नहीं है। निदान ही अगर ठीक ना हो तो फिर तुम लाख औषधियों का उपयोग करते रहो, लाभ तो होगा नहीं, हानि भला हो जाए, क्योंकि अक्सर जो औषधि तुम्हारे काम की ना थी उसे अगर ले लोगे तो हानि होगी। ये मैं तुम्हारे प्रश्न का निदान कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं, तुम्हारे प्रश्न की नबज को पकड़ रहा हूं। पहली बात, तुम पत्थर नहीं हो, पत्थर पूछता नहीं। मेरी पत्थरों से भी मुलाकात है, पत्थर कभी नहीं पूछता मैं कौन हूं। तुम चैतन्य हो इसलिए प्रश्न उठता है, पौधे भी नहीं पूछते, वृक्ष भी नहीं पूछते, पत्थर से ज्यादा जीवन थे, लेकिन प्रश्न अभी भी प्रश्न नहीं उठा है। तो जीवन भी काफी नहीं है प्रश्न के लिए, तुम जीवन से कुछ ज्यादा हो। पशु पक्षी भी नहीं पूछते, पौधों से विकसित हैं, उड़ सकते, आ जा सकते, अगर कोई हमला करे तो रक्षा करते, मौत से डरते हैं, जीवन का कुछ पता नहीं। तुम जीवन के संबंध में पूछ रहे हो कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तुम पशु पक्षियों से भी कुछ ज्यादा हो, तुम जीवंत हो, चैतन्य हो, और चेतना में विमर्श है, रिफ्लेक्शन की शक्ति। तुम लौट के पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझसे मत पूछो, इस प्रश्न को ध्यान बना लो। एकांत में रोज आंख बंद करो, इसी प्रश्न को गुंजाओ अपने भीतर कि मैं कौन हूं। और ध्यान रखना, उत्तर को बीच में आने मत देना, उधार उत्तर बीच में आएंगे, बासे उत्तर बीच में आएंगे, दूसरे से सुने हुए उत्तर बीच में आएंगे, उनको बीच में आने मत देना, क्योंकि जो उत्तर बीच में आ रहे हैं वो तुम्हारा मन है, तुम नहीं हो, वो तुम्हारी जानकारी है, तुम्हारा बोध नहीं है। अगर जानते ही होते तो पूछते क्यों, जानते नहीं हो ये तो पक्का है, इसलिए अपनी जानकारी को तो उठा कर रख देना, वो दो कौड़ी की है, उसका कोई मूल्य नहीं, उससे ज्ञान पैदा नहीं होता। उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ी, उससे कुछ हल नहीं हुआ, नहीं तो उत्तर मिल गया होता। तुम पूछना मैं कौन हूं, और दूसरों के दिए उत्तर चाहे कृष्ण ने दिए, चाहे मोहम्मद ने, चाहे महावीर ने, हटा देना, चाहे मैंने, हटा देना। तुम अपना प्रश्न ही उतारते जाना, प्रश्न को निखारना, अपने सारे प्राण को प्रश्न पर लगा देना, मैं कौन हूं। कोई उत्तर ना आएगा, सन्नाटा छा जाएगा, जैसे जैसे तुम प्रश्न को पूछोगे गहरे और गहरे, उतना सन्नाटा होता जाएगा, घबराहट भी आने लगेगी कि उत्तर कहीं भी नहीं, क्योंकि तुम उत्तर की जल्दी में हो, उत्तर इतने जल्दी नहीं मिलता। पहले तो तुम्हारे प्रश्न की तलवार से और सारे उधार उत्तरों के सिर काट डालने होंगे। जैन फकीर कहते हैं कि अगर ध्यान के मार्ग पर बुद्ध से भी मिलना हो जाए तो उठा के तलवार दो टुकड़े कर देना। रोज बुद्ध की पूजा करते और रोज अपने शिष्यों को समझाते हैं कि ध्यान के मार्ग पर अगर बुद्ध से मिलना हो जाए तो जरा भी लाज संकोच मत करना, दो टुकड़े कर देना तलवार उठा के, क्योंकि ध्यान के मार्ग पर दूसरे से मुक्त होना अनिवार्य है। तुम पर से मुक्त हो सकोगे तभी तुम्हारी आंखें स्वयं पर पड़ेंगी, नहीं तो आंखें पर से उलझी रहती, फिर पर कौन है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, या बुद्ध, या महावीर, या कृष्ण, पर तो पर है। एक ऐसी घड़ी आएगी इस जिज्ञासा में जहां प्रश्न ही रह जाएगा, मैं कौन हूं, और सन्नाटा होगा, तुम्हारी हड्डी हड्डी में, मांस मज्जा में एक ही प्रश्न गूंजने लगेगा, मैं कौन हूं, तुम्हारे प्राणों में एक ही तीर चुभने लगेगा, और गहरा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और घबराहट बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि कहीं कोई उत्तर नहीं दिखाई पड़ता, सागर है चारों तरफ और किनारा कहीं भी नहीं। वही घड़ी साहस की घड़ी, अगर तुम उस घड़ी को पार कर गए तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। उत्तर तक कब कोई पहुंचता है, जब ऐसी घड़ी आ जाती है कि कोई उत्तर नहीं बचता, तुम एकदम अज्ञानी हो जाते हो, कोई उत्तर नहीं, बच्चे का अर्थ हुआ एकदम अज्ञानी हो गए, निर्दोष बालवत हो गए, कुछ भी पता नहीं है, सब पांडित्य गया, सब बुद्धि गई, सब मन गया, सिर्फ प्रश्न बचा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, एक धुन बची, प्रश्न भी शब्द नहीं रह जाएंगे अंत में, सिर्फ एक बोध रह जाएगा कि मैं कौन हूं। ऐसा नहीं कि तुम दोहराओगे मैं कौन हूं, शुरू में दोहराओगे, शुरू में बात ओंठ पर होगी, फिर जीभ पर होगी, फिर कंठ पर होगी, फिर हृदय में उतर जाएगी, फिर तुम्हें दोहराना ना होगा, तुम अनुभव करोगे कि मैं कौन हूं। एक प्रश्नवाचक चिन्ह तुम्हारे प्राणों में खड़ा हो जाएगा, नहीं कि शब्द रहेंगे, शब्द तो गए, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब तुम सिर्फ प्यास ही प्यास रहोगे, कौन हूं कौन हूं कौन हूं। उस प्यास को अगर झेल गए तो जब सब उत्तर गिर जाते हैं तो आखिर में प्रश्न भी गिर जाता है। जब उत्तर आता ही नहीं कोई तो कब तक प्रश्न को पूछोगे। ख्याल रखना, जल्दबाजी मत करना, अपने से मत गिरा देना, अन्यथा बेकार गई बात, अपने से मत गिरा देना, चेष्टा करके मत गिरा देना कि ठीक है बहुत हो गया बंद करें। वर्ष लग सकते, रोज पूछते चले जाओ, एक घंटा ऐसे दे दो, किसी दिन अचानक तुम पाओगे सब रुक गया, उत्तर तो गए प्रश्न भी गया, तुम हो खालिस, तुम शब्द नहीं बनते, बुद्धि की कोई तरंग नहीं उठती, उसी क्षण तुम पाओगे उत्तर मिल गया। उत्तर कुछ ऐसा थोड़ी मिलेगा कि लिखा लिखाया कागज पर, उत्तर कुछ ऐसा थोड़ी मिलेगा कि कोई कहेगा कि बेटा सुनो कि वत्स, ये रहा उत्तर। उत्तर की तरह उत्तर न मिलेगा, अनुभव की तरह मिलेगा। तुम जान लोगे बिजली कौंध गई, तुमने देख लिया, इसलिए तो हम दर्शन कहते हैं इस घड़ी को, तुमने देख लिया तुम कौन हो, अपने पे आंख पड़ गई, अपने से मुलाकात हो गई, अपने आमने सामने पड़ गए, और जिस घड़ी तुमने जान लिया तुम कौन हो, उसी घड़ी तुमने जान लिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन को जान लिया, जीवन का लक्ष्य जान लिया, स्रोत जान लिया, गंतव्य जान लिया, स्वयं को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, क्योंकि तुम उसी की एक किरण हो। एक किरण को भी जान लो तो सारे सूरज का राज समझ में आ गया, सागर की एक बूंद को पहचान लो तो सारे सागरों का राज समझ में आ गया। एक बूंद में सारा सागर समाया है, एक तुम में सारा परमात्मा समाया है। प्रश्न नहीं अस्तित्व बोध का, उससे तो बचना है, कोई नहीं विकल्प हमें, फिर नया कवच रचना है। हम हैं कौन, कहां से आए, हमको क्या होना है, इन प्रश्नों का सार खोजना व्यर्थ समय खोना है, क्योंकि मिलेगा जो भी उत्तर वह केवल भ्रम होगा, दर्दहीनता और व्यर्थता का न कभी कम होगा, हमें वही जो कि हमें होना है, समझो, हमें वही जो कि हमें होना है, हमें पराए बोझों को ढोना है। तितली ने कब पूछा मैंने पंख कहां से पाया, कांटे ने कब पूछा मुझ में दंस कहां से आया, हम ही क्यों अनबूझ पहेली आत्मसत्य की बूझे, हमको ही क्या पड़ा कि हम दिन रात स्वयं से जूझें, हम अभिव्यक्ति नहीं केवल माध्यम है, नायक नहीं कथा के घटनाक्रम है, ये नरभक्षी प्रश्न हमारी काया नोच रहे, छीज रहे हैं हम उतने ही जितना सोच रहे, पंथ कौन सा और कहां जाना है दुविधा त्यागो, पीछे पड़ा हुआ है कोई क्रूर हिंस पशु भागो, भिन्न प्रक्रियाएं पर परिणति सम है, अंत वही है बंधु जहां उद्गम है। तुम पूछते हो जीवन का लक्ष्य क्या है, अंत वही है बंधु जहां उद्गम है, हम हैं वही ही जो कि हमें होना है। ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती, हम हैं वही जो कि हमें होना है, तुम अभी भी वही हो जो कि तुम्हें होना है, बीज फूल ही है, अभिव्यक्ति का भेद है। अभी द्वार बंद पड़े हैं, कल द्वार खुल जाएंगे। अभी पखुड़ियां सोई हैं, कल जग जाएंगी। बीज वही है जो उसे होना है, इसलिए तुम हर किसी बीज से हर कोई फूल पैदा नहीं कर सकते। कमल के पौधे पर कमल का फूल लगेगा और गुलाब के पौधे पर गुलाब का फूल लगेगा। लाख उपाय करो तो भी कमल के पौधे पर गुलाब का फूल ना लगेगा, क्योंकि हम हैं वही जो हमें होना है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भीतर पड़ा है, तुम्हारी संभावना तुम्हारे बीज में पड़ी है, और अंत वही है बंधु जहां उद्गम है। हम जहां से आए हैं वही पहुंच जाते हैं। ये जीवन का एक परम सत्य है। देखते हो गंगा हिमालय से चलती, गंगोत्री से गिरती सागर में, तो शायद तुम कहोगे कहां पहुंची उद्गम पर, चली थी गंगोत्री से गिर गई गंगा सागर में। नहीं, फिर तुमने पूरी बात नहीं देखी, तुमने पूरा वर्तुल नहीं देखा। गंगा सागर से फिर उठेगी भाप बनकर आकाश में, फिर बादल बनेगी और फिर बरसेगी हिमालय पर और गंगोत्री में उतरेगी, तब वर्तुल पूरा हुआ। गंगा जब फिर गंगोत्री में उतरेगी तो वर्तुल पूरा हुआ, यात्रा पूरी हुई। अंत वही है बंधु जहां उद्गम है। इसलिए तो सारे संत कहते हैं कि जब तुम सिद्धावस्था में पहुंचोगे तो फिर छोटे बच्चे की भांति हो जाओगे। अंत वही है बंधु जहां उद्गम है। जब तुम संतत्व को उपलब्ध होगे तो सरल हो जाओगे, ऐसे जैसे अज्ञानी। तो ज्ञान की चरम अवस्था ठीक अज्ञान जैसी है। उपनिषद कहते हैं जो कहे जानता हूं, जानना कि नहीं जानता। जो कहे कि नहीं जानता हूं, जानना कि जान लिया है उसने। सुकरात ने कहा है जब मैं जवान था तो सोचता था सब जानता हूं, जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे पैर डगडगाने लगे और मुझे लगा सब कहां जानता हूं, थोड़ा बहुत जान लूं वही बहुत। और जब ठीक ठीक बूढ़ा हो गया तो पता चला कि कुछ भी नहीं जानता, अज्ञानी। अज्ञान का परम बोध ज्ञान की परम घड़ी भी है। क्यों? अंत वही है बंधु जहां उद्गम है। लेकिन तुम दूसरों के उत्तर मत दोहराना, तुम्हें अपनी गंगोत्री खोजनी पड़ेगी। छाई क्यों अजब उदासी है, जिंदगी बन गई दासी है, ताजगी नहीं गर ख्यालों में, जिंदगी तुम्हारी बासी है। खोलो खिड़की, हो गई सुबह, रोशनी छिटक कर आने दो, दिल मचल रहा है गाने को, कुछ नया तराना गाने दो। तुम क्यों दोहराओ दूसरों की बातें, तुम क्यों ना अपना गीत गाओ, तुम क्यों उधारी से जियो, क्यों ना तुम अपनी निजता को प्रकट करो। मत पूछो मुझसे कि कौन हो तुम, जाओ अपने भीतर, तुम हो इतना पक्का है। तुम्हें अगर अपने पे संदेह हो तो भी तुम हो इतना पक्का है। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक दिकार्त ने कहा है कि संसार में केवल एक बात असंदिग्ध है, वह कि तुम हो। क्यों असंदिग्ध है? तो दिकार्त ने कहा कि संदेह भी अगर तुम करो तो संदेह करने के लिए भी तुम्हारा होना जरूरी है। संदेह कौन करेगा? आत्मा पर संदेह किया ही नहीं जा सकता। कम से कम संदेह करने के लिए तो स्वीकार करना होगा कि मैं हूं, मुझे संदेह है, मुझे भरोसा नहीं आता। लेकिन ये कौन है जिसे भरोसा नहीं आता, ये कौन है जिसे संदेह उठ रहा है? तो जगत में एक ही सत्य है जो असंदिग्ध है, वह तुम्हारा होना है। इस असंदिग्ध सत्य में थोड़े उतरो, इसकी सीढ़ियों में थोड़े भीतर जाओ। और मैं कौन हूं की जिज्ञासा अद्भुत है, अगर कर सको तो तुम अपने कुएं में उतर जाओ और वहां जो निर्मल इस स्फटिक मणिसा निर्मल जल है उसे पीकर सदा के लिए तृप्त हो सकते हो।
अहंकार की यात्रा, मेरा मुझ और तू से होते हुए मैं तक पहुंचती है। मेरा मुझ तू मैं का यही जाल दुख, विक्षिप्तता और पागलपन पैदा करता है और हमें अपनी वास्तविक पहचान से दूर कर देता है।
ओशो कहते हैं, बच्चे को पहले मेरे का बोध होता है, फिर मुझ का, फिर तू का और फिर मैं का। ऐसे बात आगे चलती है, ठीक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक इसी श्रृंखला में। पहले उसे मेरे का अनुभव होता है। इस पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारे अहंकार की संरचना है। पहले बच्चे को मेरे का बोध होता है, यह खिलौना मेरा है, यह माँ मेरी है, वह कब्जा करने लगता है। कब्जे वाला मन पहले प्रवेश करता है, कब्जे का भाव बुनियादी है। इसीलिए सभी धर्म कहते हैं अपरिग्रही हो जाओ, क्योंकि परिग्रह के साथ ही नरक शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों को देखो, कितने द्वेषपूर्ण, कितने पकड़ के बैठे हैं। हर बच्चा बाकी सबसे सब कुछ खींच लेने की और दूसरों से अपने खिलौनों को बचाने की चेष्टा कर रहा है, और तुम्हें ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बहुत हिंसक हैं, दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति लगभग उदासीन। यदि एक बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा हो और कोई दूसरा बच्चा आ जाए, तो तुम अडोल्फ हिटलर को, चंगेज खान को, नादिर शाह को देख सकते हो। वह अपने खिलौने को पकड़ लेगा, अब वह चोट करने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। यह साम्राज्य का प्रश्न है, आधिपत्य का प्रश्न है। मालकियत का भाव पहले आता है, यही बुनियादी विषय, और बच्चा कहने लगता है यह मेरा है। एक बार मेरा प्रवेश कर जाए तो तुम सबके प्रतिस्पर्धी बन जाते हो। एक बार मेरा प्रवेश कर जाए तो तुम्हारा जीवन प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, द्वंद, हिंसा और आक्रमण का जीवन हो जाएगा। मेरे के बाद का चरण है मुझ का। जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ हो जिस पर तुम अपना दावा कर सको, तो अचानक यह विचार खड़ा होता है कि तुम अपनी सारी मालकियत के केंद्र हो। तुम्हारी मालकियत तुम्हारा साम्राज्य बन जाती है, और उस मालकियत के द्वारा मुझ का एक नया विचार खड़ा होता है। एक बार तुम मुझ में व्यवस्थित हो जाओ तो तुम स्पष्ट देख सकते हो कि तुम्हारी एक सीमा है, और जो उस सीमा से बाहर है वे तू हैं। दूसरा स्पष्ट हो जाता है, अब चीजें विभाजित होने लगती हैं।
यह जो हमारा विभाजन है, हमारी धारणाओं और हमारे विचारों के द्वारा, यही हमें सत्य से तोड़ देता है, क्योंकि जगत एकता है, एक गहन संबंधता, तो अलगाव संभव नहीं है।
ओशो ने कहा, जगत एक है, जगत एकता है, कुछ भी विभक्त नहीं है, हर चीज बाकी दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है, यह एक गहन संबद्धता है। तुम पृथ्वी से जुड़े हो, वृक्षों से जुड़े हो, सितारों से जुड़े हो, सितारे तुमसे जुड़े हैं, सितारे वृक्षों से जुड़े हैं, नदी से जुड़े हैं, पर्वतों से जुड़े हैं, सब कुछ अंतर संबंधित है, कुछ भी अलग थलग नहीं है, कुछ भी अलग हो नहीं सकता, अलगाव संभव ही नहीं है। हर क्षण तुम श्वास ले रहे हो, श्वास भीतर लेते हो, श्वास बाहर छोड़ते हो, अस्तित्व के साथ एक सतत सेतु बना हुआ है। तुम खाते हो तो अस्तित्व तुम में प्रवेश करता है, तुम मल त्याग करते हो, वह खाद बन जाता है। वृक्ष पर लगा हुआ सेब कल तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा और खाद बन जाएगा, वृक्ष के लिए भोजन बन जाएगा। एक सतत आदान प्रदान है, यह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। जब यह रुकता है तो तुम मर जाते हो।
मृत्यु क्या है? विभाजन है मृत्यु हमारा। मैं अलग हूं, यह विचार, यह भाव हमें सत्य से तोड़ देता है। इस मैं के साथ ही, इस अलगाव के भाव के साथ ही अस्तित्व से न टूटते हुए भी टूटने का असत्य हमें संघर्ष में ले जाता है।
प्यारे ओशो कहते हैं, मृत्यु क्या है? विभाजन है मृत्यु। एकात्मता में होना जीवन है और एकात्मता में से बाहर निकल जाना मृत्यु है। तो जितना तुम सोचते हो मैं अलग हूं, उतने ही तुम कम संवेदनशील, अधिक मृत, मंद और दीन हो जाओगे। जितना तुम भाव करो कि तुम संबंधित हो, उतना ही यह पूरा अस्तित्व तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा और तुम पूरे अस्तित्व के हिस्से हो जाओगे। एक बार तुम समझ जाओ कि हम एक दूसरे के सदस्य हैं तो अचानक दृष्टि बदल जाती है। तब ये वृक्ष विजातीय नहीं रहते, वे लगातार तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। जब तुम श्वास भीतर लेते हो तो ऑक्सीजन भीतर लेते हो, जब तुम श्वास छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड भीतर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक अहिर्निश मिलन घट रहा है, हम एक लय में हैं। सत्य एक इकाई है और मुझ व तू के विचार के साथ ही हम सत्य से बाहर निकल गिरते हैं। और एक बार भीतर कोई गलत धारणा बैठ जाए तो तुम्हारी पूरी दृष्टि ही उल्टी हो जाती है। पहले मुझ, फिर तू और तब फिर एक प्रतिबिंब की भांति मैं उठता है। मैं मालकियत का सबसे सूक्ष्मतम और सुगठित रूप है। एक बार तुमने मैं कह दिया तो समझो पाप कर दिया। एक बार तुमने मैं कह दिया तो तुम अस्तित्व से पूरी तरह टूट गए। वास्तव में टूटोगे नहीं, वरना तो तुम मर ही जाओगे, लेकिन अपने विचारों में तुम सत्य से बिल्कुल टूट चुके हो। अब तुम सत्य के साथ सदा एक संघर्ष में रहोगे। तुम अपनी ही जड़ों से लड़ने लगोगे, तुम अपने ही साथ लड़ने लगोगे।
मैं क्या? यह विचार हमें, यह असत्य हमें एक क्षण भी विश्राम में नहीं रहने देता। मैं विश्राम नहीं कर सकता, वह जीता ही तनाव पर है। वास्तविकता अर्थात अस्तित्व से एकात्मकता का भाव जितनी सुंदर है, मैं अर्थात अस्तित्व से अलगाव का भाव उतना ही असुंदर। वास्तविकता जितनी सुंदर है, मैं उतना ही असुंदर।
ओशो ने कहा, इसीलिए बुद्ध कहते हैं, बहते हुए तिनके की भांति हो जाओ। ओशो कहते हैं, बहता हुआ तिनका तो तुम तभी हो सकते हो जब मैं के विचार को बिल्कुल छोड़ दो, अन्यथा तुम बहता हुआ तिनका नहीं हो सकते। संघर्ष चलता रहेगा। यही कारण है कि जब तुम ध्यान के लिए आते हो तो बहुत कठिनाई होती है। यदि मैं शांत बैठने के लिए कहूं तो तुम नहीं बैठ सकते, और कितनी सरल बात है। कोई सोचेगा यह तो सबसे सरल काम है, इसको तो सिखाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस व्यक्ति बैठे और बना रहे। लेकिन तुम बैठ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम का एक क्षण भी नहीं दे सकता। एक बार विश्राम का क्षण मिल जाए तो तुम सत्य को देख पाओगे। एक बार सत्य जान लिया गया तो मैं को गिरा दिया जाना होगा, तब वह बना नहीं रह सकता। मैं विश्राम नहीं कर सकता, वह जीता ही तनाव पर है। वह नए नए तनाव निर्मित कर लेगा, नई नई चिंताएं खड़ी कर लेगा, लगातार नई से नई परेशानियां पैदा करता रहेगा। वह तुम्हें विश्राम नहीं करने देगा। विश्राम का एक क्षण मिल जाए और मैं का पूरा भवन ढहने लगता है, क्योंकि वास्तविकता इतनी सुंदर है और मैं इतना असुंदर। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं, धारा के साथ बहो, उसे तुम्हें सागर की ओर ले जाने दो।
पैदा होने के बाद बच्चे को कुछ पहचान चाहिए। यह पहचान, जो कि एक झूठी पहचान, एक झूठा केंद्र, एक काल्पनिक केंद्र होता है, जबकि वास्तविक केंद्र एक ही होता है, जो कि पूरे अस्तित्व का भी केंद्र होता है और वही परम सत्य है।
मेरा, मुझ, तू, मैं, यह जाल है और यह जाल दुख, विक्षिप्तता और पागलपन पैदा करता है। अब समस्या यह है कि बच्चे को इससे गुजरना होगा, क्योंकि वह कौन है यह उसको पता नहीं और उसे कुछ पहचान चाहिए, चाहे झूठी पहचान ही सही, पर वह भी पहचान न होने से तो बेहतर है। उसे कोई पहचान चाहिए, उसे जानना है कि ठीक ठीक वह है कौन। तो एक झूठा केंद्र निर्मित हो जाता है। मैं तुम्हारा वास्तविक केंद्र नहीं है, वह एक झूठा केंद्र है, उपयोगी है लेकिन काल्पनिक, तुम्हारे द्वारा ही बनाया हुआ। उसका तुम्हारे वास्तविक केंद्र से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा जो वास्तविक केंद्र है वही समष्टि का भी केंद्र है। तुम्हारा वास्तविक स्व सभी का स्व है। केंद्र पर तुम्हारा अस्तित्व एक है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश के स्रोत पर सूर्य में सभी किरणें एक हैं। वे जितनी दूर चली जाती हैं उतनी ही एक दूसरे से भी दूर हो जाती हैं। तुम्हारा वास्तविक केंद्र केवल तुम्हारा ही केंद्र नहीं है, वह समस्त का केंद्र भी है, लेकिन हमने अपने स्वयं के छोटे छोटे केंद्र बना लिए हैं, होममेड, स्वनिर्मित। उनकी जरूरत है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है बिना किसी सीमा के, बिना किसी ख्याल के कि वह है कौन। यह जिंदा रहने के लिए एक अनिवार्यता है। वह जिंदा कैसे रहेगा, उसे कोई नाम देना होगा। वह कौन है इस बात का उसे ख्याल देना होगा। निश्चित ही यह ख्याल बाहर से आता है। कोई कहता है तुम सुंदर हो, कोई कहता है तुम बुद्धिमान हो, कोई कहता है तुम कितने जीवंत हो। लोग जो कहते हैं वे खबरें तुम इकट्ठी कर लेते हो। लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं उस सबको इकट्ठा करके तुम एक निश्चित छवि बना लेते हो। तुम कभी अपने भीतर उसकी ओर नहीं झांकते जो तुम हो। यह छवि तो झूठी होने ही वाली है, क्योंकि कोई और नहीं जान सकता कि तुम कौन हो, कोई और नहीं बता सकता कि तुम कौन हो। तुम्हारी अंतर्वास्तविकता तुम्हारे अतिरिक्त किसी और के लिए उपलब्ध नहीं है। तुम्हारी अंतर्वास्तविकता तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अभेद्य है। वहां बस तुम ही जा सकते हो।
हमें स्वयं ही अपनी वास्तविक पहचान को खोजना है। इस बोध के साथ ही धर्म का अवतरण होता है। मैं कौन हूँ, यह जानने का बोध हमें स्वसत्ता की तरफ ले जाता है। कोई दूसरा हमें बता नहीं सकता कि मैं कौन हूँ।
जिस दिन तुम्हें बोध होता है कि तुम्हारी पहचान झूठी है, जोड़ जाड़ कर इकट्ठी की हुई है, कि तुमने लोगों की धारणाएं इकट्ठी कर ली है, कभी जरा सोचो, बस शांत बैठ जाओ और सोचो कि तुम कौन हो। कई ख्याल उठेंगे, बस उन्हें देखते रहो कि वे कहां से आ रहे हैं, और तुम स्रोत को खोज ले पाओगे। कुछ बातें तुम्हारी माँ से आई हैं, काफी बातें, लगभग 80-90%। कुछ तुम्हारे पिता से आता है, कुछ तुम्हारे स्कूल के शिक्षकों से आता है, कुछ तुम्हारे मित्रों से आता है, कुछ समाज से आता है। बस देखो, तुम सब चीजों को अलग अलग कर पाओगे कि वे कहां से आ रही हैं। कुछ भी तुमसे नहीं आता, 1% भी तुमसे नहीं आता। यह कैसी पहचान है जिसमें तुम्हारा जरा भी योगदान नहीं, और एक तुम ही हो जो योगदान कर सकते थे, वास्तव में 100 का 100%। जिस दिन तुम यह समझ जाते हो, धर्म महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस दिन तुम्हें यह बोध होता है, तुम अपनी स्वसत्ता में प्रवेश करने की कोई विधि, कोई उपाय खोजने लगते हो कि कैसे पता चले ठीक ठीक वास्तव में अस्तित्वगत रूप से कि तुम कौन हो। अब बाहर से कोई छवि तुम जमा नहीं करते, दूसरों से अपनी वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने की मांग नहीं करते, बल्कि सीधे ही तत्क्षण उससे साक्षात्कार करने के, अपने स्वभाव में प्रवेश करके वहां उसे अनुभव करने के उपाय खोजने लगते हो। किसी को पूछने की क्या जरूरत है, और किससे तुम पूछ रहे हो? वे अपने विषय में उतने ही अज्ञानी हैं जितने कि अपने विषय में तुम। वे स्वयं को ही नहीं जानते, तुम्हें किस तरह जान सकते हैं? जरा देखो, सब कैसे चल रहा है, कैसे सब चलता रहता है, कैसे चीजें घटती रहती हैं। एक झूठ दूसरे झूठ की ओर ले जाता है, तुम करीब करीब ठगे जाते हो, छले जाते हो। तुम ठगे जाते हो, और जिन्होंने तुम्हें ठगा है उन्होंने शायद जानकर ऐसा ना किया हो, शायद वे दूसरों द्वारा ठगे गए हों। तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे शिक्षक दूसरों के द्वारा छले गए हैं, अपने पिताओं, अपनी माताओं, अपने शिक्षकों के द्वारा, और बदले में उन्होंने तुम्हें छला है। क्या तुम अपने बच्चों के साथ भी यही करने वाले हो? एक बेहतर संसार में, जहां लोग अधिक प्रतिभाशाली और अधिक सजग होंगे, वे अपने बच्चों को बताएंगे कि पहचान बनाने का ख्याल झूठा है, उसकी जरूरत है और हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन यह तब तक के लिए ही है जब तक तुम स्वयं ही न खोज लो कि तुम कौन हो।
व्यक्तित्व और वैयक्तिकता, अपनी प्रामाणिकता के लिए हमें अपने सारे व्यक्तित्व को तोड़ना होगा।
ओशो कहते हैं, जो ख्याल हम दूसरों से इकट्ठे कर लेते हैं, वे हमें एक व्यक्तित्व देते हैं, और अपने भीतर से जो जानना हमें मिलता है वह हमें वैयक्तिकता देता है। व्यक्तित्व झूठ है, वैयक्तिकता वास्तविक है। व्यक्तित्व उधार है, वास्तविकता वैयक्तिकता तुम्हारी प्रामाणिकता कभी उधार नहीं हो सकती। कोई नहीं बता सकता कि तुम कौन हो। कम से कम एक काम कोई दूसरा नहीं कर सकता कि तुम्हें इस बात का उत्तर दे दे कि तुम कौन हो। नहीं, तुम्हें ही जाना होगा, तुम्हें ही अपनी अंतर सत्ता में गहरे खोदना होगा, पहचान की, झूठी पहचान की परत दर परत को तोड़ना होगा।
हमें सत्यता ऑथेंटिसिटी तक पहुंचने के लिए अपने मैं की तोड़फोड़ स्वाभाविक रूप से एक अराजकता में ले जाएगी। इस अराजकता से गुजरने पर ही हमारा वास्तविक जन्म होगा, हम स्वतंत्र व्यक्ति हो पाएंगे।
ओशो कहते हैं, वह तुम्हारी वास्तविकता होगी और जितनी जल्दी तुम खोज लो कि तुम कौन हो उतना ही अच्छा। इस विचार को तुम जितनी जल्दी गिरा दो उतना ही अच्छा, क्योंकि उसी क्षण से तुम सच में जन्मोगे और सच में ही तुम वास्तविक व प्रामाणिक होगे, तुम एक स्वतंत्र व्यक्ति हो जाओगे। जब व्यक्ति स्वयं में प्रवेश करता है तो भय लगता है, क्योंकि भीतर दुर्व्यवस्था मच जाती है। किसी तरह से तो तुम अपनी झूठी पहचान बना पाए हो, उसके साथ तालमेल बिठाया है। तुम जानते हो तुम्हारा नाम यह है कि वह है, तुम्हारे पास कुछ प्रतिष्ठा पत्र हैं, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रमाण पत्र हैं, मान मर्यादा है, धन है, जायदाद है, स्वयं को परिभाषित करने के कुछ उपाय हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी एक निश्चित परिभाषा है, भले कुछ ही काम की हो लेकिन काम करती है। भीतर जाने का अर्थ है इस कारगर परिभाषा को छोड़ना, तो अराजकता होगी। इससे पहले कि तुम अपने केंद्र पर पहुंच सको, तुम्हें बड़ी अराजक दशा से गुजरना होगा, इसीलिए भय उठता है। कोई भी भीतर नहीं जाना चाहता, लोग सिखाते चले जाते हैं स्वयं को जानो, हम सुनते हैं लेकिन फिर भी कभी नहीं सुनते, हम इसकी कोई परवाह नहीं लेते। मन में एक ख्याल सा है कि एक दुर्व्यवस्था हो जाएगी और तुम उसमें खो जाओगे, तुम उसमें फंस जाओगे। अराजकता के भय से हम बाहर की किसी भी चीज को पकड़े रहते हैं, लेकिन यह अपने जीवन को व्यर्थ करना ही है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई ओशो की देशना हमें ओशो की वाणी में उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए उनकी देशना को हम शब्दशः पढ़कर अब तक पहुंचा रहे हैं। ओशो की यह देशना ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति पुस्तक के दो कठिनाइयां चैप्टर के अहंकार सबटाइटल से ली गई है।
तो मित्रों, यदि हमें अपनी स्वतंत्रता पानी है, हमें स्वयं को जन्म देना है, हमें जानना है कि मैं कौन हूं, तो मैं की काल्पनिक अवास्तविक दुनिया से निकलकर स्वसत्ता के केंद्र में स्थित होना होगा। स्वसत्ता के केंद्र में स्थित होने का एक ही रास्ता है, ध्यान। यही कारण है ओशो कहते हैं, मेडिटेशन इज द ओनली वे। निर्णय हमें स्वयं लेना है कि ध्यान के द्वारा बुद्ध होकर परमात्मा का महाभोग करना है या बुद्धू होकर संसार के निम्न भोग तक ही सीमित रह जाना है। एक बार फिर से हमेशा की ही तरह मां के गर्भ को चुनना है या फिर पूरे अस्तित्व को एक गर्भ बनाना है। ओशो कहते हैं, धर्म की खोज फिर से इस पूरे अस्तित्व की ही एक। ओशो कहते हैं, धर्म की खोज फिर से इस पूरे अस्तित्व को ही एक गर्भ बना लेने की खोज है। ओशो की इन्हीं देशनाओं के साथ, इन्हीं आशीषों के साथ हमारा प्रेम, हमारा नमस्कार, धन्यवाद, अहोभाव अस्तित्व के प्रति और आप सभी के प्रति।
Take me to